एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, शेरिल विंट की साइंस फिक्शन। ये MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है।
बिल्कुल। और देखिए, साइंस फिक्शन का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद स्पेसशिप, एलियंस, लेजर गन्स, यही सब आता है ना?
हाँ, आमतौर पर यही छवि है, लेकिन शेरिल विंट हमें याद दिलाती हैं कि ये जो विधा है, ये जॉनरा, ये सिर्फ बच्चों की कहानियों या मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है।
सही कहा। असल में विंट का कहना है कि ये आज की दुनिया को समझने का, हमारे समाज, हमारी राजनीति, टेक्नोलॉजी, इन सबको समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका हो सकता है।
बिल्कुल, उनका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि साइंस फिक्शन हमें अपनी जानी पहचानी दुनिया को एक अजीब, एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है।
हाँ, वो एक टर्म इस्तेमाल करती हैं, कॉग्निटिव एस्ट्रांजमेंट।
हाँ, संज्ञानात्मक दूरी, मतलब ये चीजों को इतना अजनबी बना देता है कि हम रुककर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अरे, क्या ये वाकई ऐसा है? हम ऐसा क्यों नॉर्मल मान रहे हैं?
तो इससे पहले कि हम इस अजनबीपन में और गहरे उतरें, थोड़ा ये जान लें कि शेरिल विंट है कौन।
जरूर। शेरिल विंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में प्रोफेसर हैं और साइंस फिक्शन स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, क्रिटिकल थ्योरी, इन सब फील्ड्स में उनका काफी नाम है।
अच्छा।
हाँ, और उनकी खासियत यह है कि वो सिर्फ कहानियों का प्लॉट या कैरेक्टर नहीं देखती, वो साइंस फिक्शन को बड़े आइडिया से जुड़ती हैं, जैसे कल्चरल थ्योरी, बायोपॉलिटिक्स।
बायोपॉलिटिक्स, ये क्या है?
मतलब कैसे जीवन पर, शरीर पर राजनीतिक कंट्रोल होता है, और पोस्ट ह्यूमैनिज्म, यानी इंसान और मशीन के बीच की जो धुंधली होती रेखाएं हैं।
अच्छा, समझे।
और खासकर वो देखती हैं कि साइंस फिक्शन में नस्ल, लिंग, वर्ग, पर्यावरण जैसे मुद्दे कैसे दिखते हैं या कई बार कैसे नहीं दिखते। उनकी किताबें हैं जैसे बॉडीज ऑफ टुमारो, एनिमल ऑल्टरिटी, वो इन्हीं गहराइयों में जाती हैं, और वो जानी मानी जर्नल साइंस फिक्शन स्टडीज की को एडिटर भी रही हैं।
तो मतलब वो एक तरह से अकादमिक रिसर्च और आम पाठक के बीच एक ब्रिज का काम करती हैं।
बिल्कुल, उनके लिए साइंस फिक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो इसे एक तरह की कल्चरल लैब मानती हैं, जहां हम आज के मुश्किल सवालों से जूझ सकते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, सोच के स्तर पर।
ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है, कहानियों के जरिए फिलॉसफी करना, है ना?
हाँ, कुछ वैसा ही, और यही उनकी इस किताब का मकसद भी है। चाहे कोई साइंस फिक्शन में नया हो या पुराना फैन, ये किताब दिखाती है कि इसकी आलोचनात्मक अहमियत क्या है। मिंट का कहना है कि साइंस फिक्शन अपनी कल्पना की उड़ानों के वजह से ही गंभीर सोच का विषय है, न कि उनके बावजूद।
तो फिर किताब का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? आपने कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट का जिक्र किया।
हाँ, वही। किताब कहती है कि साइंस फिक्शन कोई भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिष नहीं है, ये कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट पैदा करता है। और कैसे करता है? एक नोवम पेश करके।
नोवम, ये नया शब्द है?
नोवम मतलब कोई नई चीज या आइडिया जो वैज्ञानिक तौर पर मुमकिन लगे, जैसे टाइम मशीन, कोई एलियन सभ्यता, या मान लीजिए कोई दिमाग पढ़ने वाली टेक्नोलॉजी।
अच्छा।
तो ये नोवम जो है वो हमारी रोजमर्रा की सोच को, हमारी रियलिटी को डिस्टर्ब करता है, उसे अपरिचित बना देता है, और हमें अपने आज पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है।
तो जैसा विंट कहती हैं, साइंस फिक्शन का स्ट्रेंजमेंट प्रभाव वर्तमान को दृश्यमान बनाता है, मतलब चीजों को अजीब बनाकर वो हमें वो दिखाता है जिसे हम शायद रोज देखते हैं पर नोटिस नहीं करते।
एग्जैक्टली। और किताब इसी लेंस से साइंस फिक्शन के अलग अलग थीम्स को देखती है। टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, पहचान का क्या मतलब है, पावर कैसे काम करती है, हमारे प्लैनेट का क्या होगा। क्लासिक राइटर्स जैसे H.G. वेल्स से लेकर ऑक्टेविया बटलर, किम स्टैनली रॉबिन्सन जैसे मॉडर्न नामों तक।
और वो ये दिखाती हैं कि इसे पढ़ना कैसे चाहिए, भविष्य की न्यूज रिपोर्ट की तरह नहीं।
हाँ, बल्कि हमारे आज के समाज के एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह, मतलब एक तरह का एक्सरे जो अंदर की चीजें दिखाए।
चलिए, तो अब थोड़ा इन बड़े आइडियाज में और गहरे उतरते हैं। शुरुआत इसी कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट से करते हैं। ये थोड़ा अकादमिक सा लगता है, ये काम कैसे करता है असल में?
नहीं, अकादमिक भले ही लगे, आइडिया बहुत सीधा है। सोचिए H.G. वेल्स की द टाइम मशीन। कहानी हमें भविष्य में ले जाती है, बहुत दूर, साल 80,701 में।
हाँ, मैंने पढ़ी है, उसमें वो दो तरह के इंसान होते हैं, इलॉय और मॉरलॉक।
बिल्कुल, सुंदर नाजुक इलोई जो ऊपर रहते हैं और खूंखार मॉरलॉक जो नीचे अंधेरे में। अब जाहिर है वेल्स कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, वो असल में अपने जमाने के विक्टोरियन इंग्लैंड की बात कर रहे थे।
अच्छा, कैसे?
उस समय का जो भयानक क्लास डिवाइड था, अमीर आराम तलब अपर क्लास इलोई जैसे और नीचे दबे हुए शोषित मजदूर मॉरलॉक जैसे, वेल्स ने उस विभाजन को उसके लॉजिकल भयानक अंजाम तक पहुंचाकर दिखाया।
अरे वाह, तो भविष्य की कहानी सुनाकर वो असल में अपने आज की कड़वी सच्चाई दिखा रहे थे, उसे एक अजीब नए रूप में पेश करके।
सही पकड़ा, ताकि लोग सोचें कहीं हम इसी तरफ तो नहीं बढ़ रहे। सवाल ये नहीं था कि क्या टाइम मशीन बन सकती है, सवाल ये था कि ये कहानी हमारे समाज के बारे में क्या बता रही है।
ये तो कमाल का तरीका है अपनी दुनिया को बाहर से देखने का, जैसे हम कोई एलियन हो।
हाँ बिल्कुल। अब दूसरे बड़े आइडिया पर आते हैं, साइंस फिक्शन कैसे इंसान होने के हमारे बने बनाए ख्याल पर ही सवाल खड़ा करता है कि हम सब एक फिक्स्ड रैशनल इंडिविजुअल हैं।
हाँ, ये तो साइंस फिक्शन का फेवरेट टॉपिक लगता है, क्लोन, एंड्रॉइड, एआई।
बिल्कुल, फिलिप किटिक की किताब याद कीजिए, डू एंड्रॉइड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप, जिस पर वो फिल्म बनी ब्लेड रनर।
हाँ हाँ, डिकार्ड वाली।
उसका काम ही है एंड्रॉइड्स को पहचान कर रिटायर करना। लेकिन कहानी आगे बढ़ते बढ़ते असली और नकली, इंसान और मशीन के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है
कि वो खुद शक करने लगता है कि कहीं वो खुद तो एंड्रॉइड नहीं, उसकी अपनी पहचान हिल जाती है।
एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एंड्रॉन की बात नहीं है, मेमोरी इम्प्लांट्स की कहानियां हैं, चेतना को कंप्यूटर में अपलोड करने की बातें हैं, वर्चुअल रियलिटी में जीने की कल्पनाएं।
हाँ,
ये सब पूछते हैं हमारी पहचान कितनी पक्की है, क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है या टेक्नोलॉजी से बदल सकती है, बना सकती है, यहां तक कि छीन भी सकती है। विंड कहती हैं कि साइंस फिक्शन हमें उस दुनिया के लिए तैयार करता है जहां सेल्फ की पुरानी परिभाषाएं लगातार टूट रही हैं।
और ये पहचान वाली बात ये शरीर से भी तो जुड़ती है। आपने कहा था विंड की दिलचस्पी बायोपॉलिटिक्स और पोस्ट ह्यूमनिज्म में है,
जी।
तो साइंस फिक्शन कैसे दिखाता है कि हमारा शरीर, हमारी देह अब सिर्फ हमारी नहीं रही।
हाँ, कि वो टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल कंट्रोल का एक मैदान बन गई है। यहीं पर साइबरपंक जॉनरा बहुत अहम हो जाता है।
साइबरपंक
जैसे विलियम ग्रिप्सन की न्यूरोमैंसर।
बिल्कुल,
वहाँ शरीर को मीट कहा गया है, मतलब सिर्फ मांस का टुकड़ा जिसे मशीनी हिस्सों से अपग्रेड किया जा सकता है, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। या फिर सोचिए जेनेटिक इंजीनियरिंग और यूजेनिक्स पर आधारित कहानियों के बारे में, जैसे फिल्म गेटाका।
हाँ, जहाँ आपकी किस्मत आपकी जीन्स तय करते हैं।
सही। या ऑक्टेविया बटलर की ज़ेनोजेनेसिस सीरीज, जहाँ एलियंस इंसानों को जेनेटिकली बदल रहे हैं। ये सिर्फ भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं दिखा रहे, बल्कि पूछ रहे हैं क्या नेचुरल है, क्या नैतिक है।
और यहीं पर वो पोस्ट ह्यूमन का आइडिया आता है ना।
हाँ, एक ऐसी स्थिति जहाँ इंसान, जानवर और मशीन के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। विंट का तर्क है कि साइंस फिक्शन सिर्फ भविष्य की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो आज की सच्चाई को पकड़ रहा है।
आज की सच्चाई कैसे?
सोचिए, असिस्टेड रिप्रोडक्शन, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, प्लास्टिक सर्जरी, हमारा सारा डेटा जो ऑनलाइन है, ये सब क्या है? ये दिखाता है कि हम एक तरह से पहले ही पोस्ट ह्यूमन दौर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे शरीर और दिमाग को बदल रही है।
ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब थोड़ा बड़े स्केल पर चलते हैं, पूरे प्लैनेट के लेवल पर। पर्यावरण, इकोलॉजी, एंथ्रोपोसीन, मतलब वो युग जिसमें इंसानों का असर ग्रह पर दिखने लगा है, साइंस फिक्शन इन बड़े मुद्दों से कैसे डील करता है? क्या ये सिर्फ तबाही की डरावनी कहानियां हैं?
नहीं, सिर्फ तबाही नहीं, हालांकि वो एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो क्लाइमेट फिक्शन या क्लाइफाई का उभार हुआ है वो इससे ज्यादा गहरा है।
क्लाइफाई, ये नया टर्म है।
हाँ, क्लाइमेट फिक्शन। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एब्स्ट्रैक्ट खतरा लगता है, आंकड़े, ग्राफ बहुत दूर की बातें।
सही बात है।
साइंस फिक्शन इसे पर्सनल बनाता है, इमोशनल, महसूस करने लायक। ये दिखाता है कि पिघलते ग्लेशियर, ये बढ़ता समंदर सिर्फ नक्शे पर लकीरें बदलना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगियों का उजड़ना है, समाजों का टूटना है, नए तरह के झगड़ों का पैदा होना है।
तो ये डर को ज्यादा करीब ले आता है।
हाँ, लेकिन सिर्फ डर नहीं, कुछ लेखक समाधान भी तलाशते हैं, जैसे किम स्टेनली रॉबिन्सन। अपनी किताबों में वो दिखाते हैं कि शायद हम साइंस और सोशल इमेजिनेशन को मिलाकर इस संकट से निपट सकते हैं।
अच्छा।
वहीं उर्सुला के लेगेन जैसी लेखिकाएं हैं, द वर्ड फॉर वर्ल्ड इज फॉरेस्ट याद कीजिए, वो हमें प्रकृति के साथ जीने के बिल्कुल अलग, नॉन एक्सप्लॉयटेटिव तरीके सोचने पर मजबूर करती हैं। तो एसएफ सिर्फ वार्निंग बेल नहीं है, वो उम्मीद और बदलाव के रास्ते भी दिखा सकता है, वो हमारी इकोलॉजिकल चेतना जगा सकता है।
ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, पर्यावरण से अब आते हैं नेटवर्क और पावर पर। आज की दुनिया कितनी कनेक्टेड है? इंटरनेट, सोशल मीडिया, ग्लोबल इकोनॉमी, साइंस फिक्शन इसे कैसे दिखाता है, खासकर पावर और कंट्रोल के नजरिए से?
जहां डेटा एक वर्चुअल स्पेस है, साइबर स्पेस, और जहां बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस देशों से भी ज्यादा पावरफुल हैं।
ये तो आज काफी हद तक सच लगता है ना?
बिल्कुल। और जॉर्ज ऑरवेल का 1984, बिग ब्रदर वाली निगरानी।
हाँ, वो तो क्लासिक है।
वो तो आज के डिजिटल सर्वेलेंस, डेटा कलेक्शन, फेशियल रिकग्निशन के जमाने में और भी ज्यादा रेलेवेंट और डरावना लगता है।
तो साइंस फिक्शन हमें दिखा रहा है कि ये नेटवर्क जहाँ एक तरफ हमें जोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कंट्रोल, अलगाव, यहाँ तक कि हमारी असलियत को मैनिपुलेट करने का जरिया भी बन सकते हैं।
सही। ये सवाल पूछता है कि जब हमारी जिंदगी का हर पल डेटा बन रहा है, तो असली पावर किसके हाथ में है?
और आखिर में, जो शायद सबसे अहम बात है, साइंस फिक्शन एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर, विंट कहती है कि ये विधा अपने नेचर से ही पॉलिटिकल है।
हाँ, यूटोपिया यानी आदर्श समाज की कल्पना और डिस्टोपिया यानी बुरे दमनकारी समाज की चेतावनी, ये दोनों ही मौजूदा सिस्टम पर सीधी सीधी कॉमेंट्री हैं।
लेकिन विंट इससे भी आगे जाती हैं, है ना? वो इस बात पे जोर देती हैं कि कैसे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उन्होंने साइंस फिक्शन को अपनी आवाज बनाने के लिए इस्तेमाल किया है।
बिल्कुल, यहाँ एफ्रोफ्यूचरिज्म का जिक्र करना बहुत जरूरी है।
एफ्रोफ्यूचरिज्म?
हाँ, ऑक्टेलिया बटलर, सैमुअल आर डेलानी जैसे ब्लैक राइटर्स ने साइंस फिक्शन के जाने पहचाने एलिमेंट्स, एलियंस, टाइम ट्रैवल, जेनेटिक मॉडिफिकेशन को यूज करके नस्लवाद के इतिहास और आज की तीखी आलोचना की, और साथ ही ब्लैक आइडेंटिटी, कल्चर और आजादी के भविष्य की जबरदस्त कल्पनाएं पेश की।
ये तो बहुत पावरफुल है।
बहुत ज्यादा। इसी तरह उर्सुला के लेगिन, जोआना रस जैसी फेमिनिस्ट राइटर्स ने SF का इस्तेमाल पेट्रियार्की को चैलेंज करने और ऐसे समाज सोचने के लिए किया जहां जेंडर और सेक्सुअलिटी के नियम बिल्कुल अलग हों। विंट मानती हैं कि SF की असली ताकत यही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया जैसी है वैसी ही हमेशा नहीं रहेगी। ये बदलाव की संभावना के लिए एक आइडियोलॉजिकल स्पेस खोलता है।
और यही पर विंट की वो बात फिट होती है जो आपने पहले कही थी। शैली का श्वेत पुरुष दृष्टिकोण से आगे विस्तार ने इसकी आलोचनात्मक क्षमता को बदल दिया है।
बिल्कुल। मतलब जब अलग अलग बैकग्राउंड की आवाजें आईं, तो साइंस फिक्शन सिर्फ ज्यादा इंक्लूसिव नहीं बना, बल्कि ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा गहरा भी बन गया।
तो अगर हम विंट की बातों का सार निकाले, तो कुछ मेन मैसेजेस क्या होंगे? पहला तो शायद यही कि साइंस फिक्शन सिर्फ एस्केपिज्म नहीं है, भागने की जगह नहीं, बल्कि हमारे आज के समाज पर एक क्रिटिकल कॉमेंट्री है।
हाँ, ये कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट के जरिए हमें अपनी दुनिया पर सवाल उठाना सिखाता है। भारत में ही सोचें तो जाति, धर्म, विकास के मॉडल पर बनी SF कहानियां हमें इन मुद्दों को नए ढंग से देखने में मदद कर सकती हैं।
दूसरा अहम संदेश, टेक्नोलॉजी कभी न्यूट्रल नहीं होती, वो हमेशा सामाजिक, राजनीतिक पावर इक्वेशन से जुड़ी होती है।
बिल्कुल। AI हो या बायोमेट्रिक पहचान, हमें सोचना चाहिए कि इससे किसे फायदा है, कौन पीछे छूट रहा है। SF हमें टेक्नोलॉजी को सिर्फ गैजेट की तरह नहीं, बल्कि उसके सामाजिक असर के साथ देखने की आदत डालता है। विंड की वो बात फिर याद आती है, SF भविष्यवाणी नहीं है, ये वर्तमान का निदान है। भविष्य की तकनीकी कहानियां असल में आज की सामाजिक बीमारियों के लक्षण दिखा रही होती हैं।
तीसरा, किसकी कहानी कही जा रही है, ये बहुत मायने रखता है। जैसे हमने एफ्रोफ्यूचरिज्म और फेमिनिस्ट SF की बात की, मार्जिनलाइज्ड आवाजों ने SF को ज्यादा रेलेवेंट और पावरफुल बनाया है।
हाँ, भारत जैसे विविधता वाले देश में ये सोचना जरूरी है कि हमारी कहानियों में किसके भविष्य की कल्पना हो रही है और किसकी आवाज दब रही है।
चौथा, ये हमें बड़ी चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने और शायद महसूस करने में भी मदद करता है।
सही कहा। जब हम कहानी में पढ़ते हैं कि मुंबई डूब रहा है या ग्लेशियर पिघल गए हैं, तो वो सिर्फ डेटा से ज्यादा असर करता है। ये हमें कलेक्टिव जिम्मेदारी का एहसास करा सकता है।
और पांचवां, जो शायद सबसे ज्यादा उम्मीद जगाता है, साइंस फिक्शन हमारी सामाजिक कल्पना को पंख देता है। ये हमें याद दिलाता है कि भविष्य तय नहीं है।
हाँ, विंट कहती हैं, भविष्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि वर्तमान विकल्पों द्वारा आकारित एक दिशा है।
मतलब हमारे आज के फैसले ही तय करेंगे कि कल कैसा होगा। SF हमें अलग अलग रास्ते सोचने में मदद करता है।
और इसी सोच को विंट एक और तरह से कहती हैं, है ना? साइंस फिक्शन सामाजिक कल्पना के लिए एक प्रयोगशाला है। बिल्कुल, जैसे साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही एसएफ राइटर्स समाज, राजनीति, तकनीक के साथ आइडियाज के एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है, अच्छा या बुरा।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या करें, इन आइडियाज का क्या फायदा?
फायदे हैं, एक तो सीधा फायदा है क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी, मतलब जब हम अगली बार कोई फिल्म देखें, न्यूज पढ़ें या किसी नेता को सुने तो हम सवाल पूछ सकते हैं, यहां दुनिया कैसी दिखाई जा रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी को अच्छा या बुरा बताया जा रहा है, किसकी पहचान को नॉर्मल माना जा रहा है, किसको दूसरा।
हाँ, ये तो है, हम ज्यादा सवाल पूछने लगेंगे।
दूसरा, टेक्नोलॉजी और एथिक्स पर बेहतर सोच। जब कोई नई टेक आती है, AI, जीन एडिटिंग, नया सोशल मीडिया ऐप, हम सिर्फ ये ना सोचें कि ये क्या कर सकती है, बल्कि ये भी सोचें कि इसका समाज पर, रिश्तों पर, न्याय पर क्या असर होगा। साइंस फिक्शन हमें इन सवालों के लिए तैयार करता है।
तीसरा, ये हमारी राजनीतिक और सामाजिक कल्पना को बढ़ा सकता है। कई बार हमें लगता है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, कोई और रास्ता है ही नहीं।
हाँ, टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव।
बिल्कुल, साइंस फिक्शन हमें दिखाता है कि नहीं, और रास्ते हो सकते हैं, समाज को अलग तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, न्याय के अलग मतलब हो सकते हैं। ये हमें उस और कोई चारा नहीं वाली सोच से बाहर निकाल सकता है।
और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये सहानुभूति या एम्पथी बढ़ा सकता है। जब हम किसी एलियन या एंड्रॉयड या किसी बिल्कुल अलग कल्चर वाले इंसान के नजरिए से कहानी पढ़ते हैं तो हम दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल समस्याओं को भी कहानियों के जरिए महसूस करना हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी इंसानियत और प्लैनेट के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो शायद यही है कि साइंस फिक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ स्पेस एडवेंचर नहीं है, बल्कि ये इंसान होने का मतलब, समाज का भविष्य, हमारे ग्रह की सेहत जैसे बड़े सवालों से जूझने का एक बहुत ही गंभीर और जरूरी तरीका है।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि कैसे ये जॉनरा, जिसे अक्सर सिर्फ मनोरंजन माना जाता है, वो हाशिए पर धकेले गए समुदायों के लिए प्रतिरोध का, अपनी कहानी कहने का इतना शक्तिशाली जरिया बन सकता है। ये सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं बल्कि वर्तमान में न्याय के लिए लड़ने का एक क्रिएटिव हथियार भी है।
बिल्कुल, तो कुल मिला के शेरिल विंड की ये किताब हमें सिखाती है कि साइंस फिक्शन पढ़ना सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये अपने समय को, अपनी दुनिया को और अपने भविष्य की संभावनाओं को समझने की एक जरूरी एक्सरसाइज है। भविष्य की कहानियां असल में हमारे आज के संघर्षों और चुनावों की ही कहानियां हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।